Iran Radio Podcast।
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। स्पेन दूसरा ऐसा मुल्क था जिसने सपनों के शहर तक पहुंचने के लिए महासागर में अपने जहाज उतार दिए थे और आखिरकार वो अपने सपनों के शहर तक पहुंच भी गया। स्पेनिशों ने एल्डोराडो को इनका इलाके में खोज निकाला। वो इतने लालची थे कि उन्होंने इस इलाके के पूरे सोने पर हाथ साफ करने के लिए इनका में छोटे और बड़े किसी पर रहम नहीं किया और जो जिंदा बच गए थे उन्हें सोने की खदानों में मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया। अक्सर स्थानीय लोग परेशान होकर सोने की खदानों में अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लिया करते थे। कभी कभी तो जुल्म और ग़ुलामी से निजात पाने के लिए पूरा परिवार एक साथ खुदकुशी कर लिया करता था। इनका साम्राज्य के सम्राट ने जान बख्शी के लिए स्पेनिशों को ऊँटों पर लाद कर सोना दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना रहम किया कि वो मरने से पहले ईसाई धर्म स्वीकार कर ले और किस तरह की मौत चाहिए इसका चयन कर ले। हालांकि वो सोना भी स्पेनिशों को रास नहीं आया और उनसे भी बड़े ब्रितानी डकैत फ्रांसिस डेरेक ने वो उनसे छीन लिया और क्वीन एलिजाबेथ के हवाले कर दिया। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 6th एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। उस समय ब्रिटिश अमेरिकी महाद्वीप में दूसरे यूरोपीय देशों से पीछे रह गए थे और उन्हें काफी शिद्दत से अपने पिछड़ेपन का एहसास था। ड्रेक की इस हरकत से उनमें एक नया जोश भर गया और ब्रिटेन ने अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए उसे जिम्मेदारी देकर वहाँ के लिए रवाना कर दिया। क्वीन एलिजाबेथ ने ड्रेक को अपने महल में बुलाया और उसे कहा कि वो भी मेगलान की तरह ज़मीन का चक्कर लगाए। महल में दूसरे भी मेहमान थे, उनमें से एक ब्रिटेन के विदेश मंत्री भी थे जिन्होंने पार्टी के बाद ड्रेक को अलग में ले जाकर बताया कि ज़मीन का चक्कर लगाने वाली बात क्वीन ने स्पेनिश जासूसों को धोखा देने के लिए कही है। उसकी असली जिम्मेदारी है कि वो मेगलान या मेजलान स्ट्रेट से गुजरकर दक्षिण अमेरिका के तटीय इलाकों से होकर उत्तर की ओर बढ़े। ड्रेक को जंग का ऐलान किए बिना ही स्पेनिश जहाज़ों पर हमला करना था और उन्हें कमज़ोर बनाना था ताकि अंग्रेज़ आसानी से दुनिया के इस हिस्से में अपने पांव जमा सकें। अमेरिका में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कैलिफोर्निया पर कब्ज़ा किया, उसके बाद जिस इलाके पर कब्ज़ा किया उसका नाम वर्जीनिया रखा। अमरीकी महाद्वीप में दिन ब दिन अंग्रेज़ों की पैठ बढ़ती जा रही थी और ब्रितानी सरकार लोगों को इन इलाकों में पलायन के लिए प्रेरित कर रही थी। उन दिनों ब्रिटेन में एक अजीब मजहबी गुट ने सिर उभारा जिसके मानने वाले खुद को क्वेकर या भूकंप के लोग कहते थे। मजहबी जोश में वो हिलने और लरजने लगते थे। वे कब्रों के पत्थर पर नाम नहीं लिखते थे और सबसे हटकर लिबास पहनते थे। ब्रितानी चर्च इस गुट के मजहबी विचारों से बहुत परेशान था और उन्हें शैतानी विचारों का प्रचारक कहता था। उसका मानना था कि इन्हें कहीं दूर दराज इलाके में भेज दिया जाए ताकि उनकी आवाज़ किसी भी ईसाई के कानों में ना पड़े। आखिरकार ब्रितानी चर्च की ये ख्वाहिश पूरी हो गई। क्वेकर का मुखिया विलियम पेन था। उसके पिता एक एडमिरल थे और उसने ब्रितानी किंग को गद्दी वापस दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। किंग ने उसे 16,000 लीरा इनाम के तौर पर देने का वादा किया था। एडमिरल का इंतकाल हो गया, लेकिन किंग ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसके बाद उसके बेटे ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। ब्रितानी हुकूमत 16,000 लीरा देने के बजाय अमरीका में उसे बड़ा इलाका दे सकती है ताकि क्वेकरों को वहाँ बसाया जा सके। किंग और चर्च ने बड़ी खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पेन को अमेरिका में एक बड़ा इलाका दे दिया गया। जब वो पहली बार इस इलाके में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि ये इलाका बहुत ही हरा भरा और समृद्ध है। उसने उस सरजमीन का नाम सिल्वानिया रख दिया, लेकिन कुछ समय बाद इसके शुरू में अपना नाम पेन भी बढ़ा दिया और इस तरह ये पेनसिल्वानिया हो गया। क्वेकरों के अलावा चोर, उचक्के और टोपीबाज बड़ी संख्या में ब्रिटेन से अमरीका भेजे जा रहे थे। एक ब्रितानी जनरल ने अमरीका के एक इलाके में इसी तरह के लोगों को बसाने की योजना बनाई। जो इलाका राजा ने उसे दिया था उसने उसके सम्मान में उसका नाम जॉर्जिया रख दिया। जनरल ने कुछ पैसा इकट्ठा किया ताकि ब्रिटेन में जो लोग अपना कर्ज वापस नहीं लौटाने की वजह से जेलों में हैं उन्हें आज़ाद करा सके। जनरल का मानना था कि ये लोग कोई मामूली लोग नहीं हैं और आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने साहसी काम किए हैं, लेकिन हालात की वजह से जेल पहुंच गए हैं। अगर उन्हें अमेरिका में लाकर बसाया जाए तो वो जॉर्जिया की तरक्की में हिस्सेदार बन सकते हैं और दूसरे इलाकों की तुलना में इस इलाके को जल्द विकसित कर सकते हैं। जनरल का मानना था कि इस नई सरजमीन में एक नए समाज का गठन किया जाए, एक ऐसा समाज जहाँ जुर्म, कत्ल और शराब का नामो निशान न हो। उसने अमेरिका के लिए निकलने से पहले अपनी किताब उन कैदियों को दी जिन्हें जेलों से आज़ाद करवाया गया था। ये नैतिकता पर लिखी गई किताब थी जिसका नाम था किस तरह से खुदा के रास्ते में आगे बढ़ें और ब्रांडी पीने वालों के लिए एक दोस्ताना नसीहत। जनरल ने अपने सभी लोगों को एक जहाज़ में सवार किया और अमेरिका की तरफ निकल पड़ा, लेकिन जॉर्जिया पहुंचते पहुंचते उसे एहसास हुआ कि दुनिया की सारी नैतिक किताबें भी इन लोगों को नहीं सुधार सकती और शराब पीने से उन्हें नहीं रोक सकती। ये लोग जॉर्जिया को भी अमेरिका के दूसरे इलाकों से आगे नहीं ले जा सके, बल्कि जॉर्जिया की तरक्की की रफ्तार अपने दूसरे पड़ोसी राज्यों से कम थी। जनरल जेलों में वित्तीय मामलों में कैद कैदियों को आज़ाद करके अमेरिका तो ले गया, लेकिन वहाँ उसे कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन मुजरिमों को इस नए महाद्वीप और कब्ज़े वाले इलाकों में भेजने की ये सोच ब्रिटिश सरकार की एक नीति बन गई। सरकार को जब किसी मुजरिम को कड़ी सज़ा देनी होती थी तो वो उसे जेल में डालने के बजाय काला पानी की सज़ा दे दिया करती थी। खतरनाक मुजरिमों को कड़ी मेहनत की सज़ा सुनाई जाती थी ताकि ब्रिटेन से ज़्यादा लोगों को उन इलाकों में बसाया जा सके। यही वजह है कि अमेरिका में आज अंग्रेज़ों की आबादी सबसे ज़्यादा है। अंग्रेज़ों ने अमेरिका में 13 राज्यों की बुनियाद रखी और आगे चलकर इन्हें संगठित करके एक संयुक्त राज्य बना दिया। अंग्रेज़ व्यापारी हर कीमत पर ब्रिटेन से लोगों का पलायन चाहते थे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि अधिकारी कैफेज और गैलियों में ब्रिटिश जवानों की ताक में बैठ जाते थे, उन्हें शराब पेश करते थे और उनके साथ खूब हंसी मजाक करते थे। जब वे नशे में बेसुध हो जाते थे तो उन्हें लाद कर अमरीका जाने वाले जहाज़ों पर सवार कर दिया करते थे। लोगों को जब नशा उतरता था तो वो खुद को जहाज़ में पाते थे जो काफ़ी दूरी तय कर चुका होता था। जब वे एतराज़ करते थे तो जहाज़ पर सवार व्यापारी उनके सामने ये समझौता पेश कर दिया करते थे जिस पर उन्होंने नशे की हालत में दस्तखत किए थे। कुछ वक्त के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन व्यापारी हार मानने वाले नहीं थे। व्यापारियों के कारिंदे सड़कों और गलियों के किनारे छिपकर बैठ जाते और वहां से गुजरने वाले किसी भी जवान के सिर पर चोट मारते थे और बेहोशी की हालत में उसे जहाज़ पर लाद दिया करते थे। अंग्रेज़ इस काम को द हैबिट ऑफ फूलिंग कहा करते थे। इस तरह से उन्होंने उत्तरी अमरीका के मूल लोगों पर अंग्रेज़ अपराधियों और चोरों की जमात को थोप दिया। अमरीकी महाद्वीप में अंग्रेजों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, इसके बावजूद वहां के ज्यादातर क्षेत्रों पर फ्रांस का कब्जा था। अंग्रेजों के कब्जे में जितने भी इलाके थे उनके चारों ओर फ्रांस के कब्जे वाले इलाके थे। फ्रांसीसी जब भी चाहते बाहरी दुनिया से उनका संबंध तोड़ सकते थे। अंग्रेजों ने इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए जंग शुरू करने की योजना बनाई। एक बार वे हिंदुस्तान में उन्हें हरा चुके थे और अब अमेरिका में भी उन्हें मात देना चाहते थे। अंग्रेजों ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बिना ऐलान के ही फ्रांसीसियों पर अचानक हमला कर दिया और अमरीकी तटों पर उनके जहाज़ों को जब्त करना शुरू कर दिया। अमरीका, हिंदुस्तान, मेडिटेरेनियन और इंग्लिश चैनल में ये जंग करीब 7 साल जारी रही। कभी कभी समुद्र में हिंदुस्तान में ब्रिटेन का पलड़ा भारी पड़ जाता था और स्पेन की मदद के बावजूद फ्रांस ब्रिटेन के सामने कमज़ोर पड़ रहा था। अमरीकी महाद्वीप में ब्रितानियों को फ्रांसीसी उपनिवेशों पर भी कब्जा करना था और उत्तरी अमरीका में कनाडा पर भी हमला करना था। उनके पास इसके लिए 60,000 की फौजियों की तादाद मौजूद थी। ये संख्या फ्रांसीसी फौजियों से करीब 6 गुना ज़्यादा थी। अंग्रेज़ों ने कनाडा की घेराबंदी कर ली और वहाँ गोश्त और गेहूँ के पहुँचने पर रोक लगा दी। फ्रांसीसी भूख से मजबूर होकर अपने घोड़े ही काट कर खाने लगे। करीब सभी मोर्चों पर फ्रांसीसी अंग्रेजों के सामने मात खाने लगे। 1763 में फ्रांस ब्रिटेन के साथ शांति समझौता करने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद जो यूरोपीय देश दूसरों से पीछे रह गया था, हिंदुस्तान और अमेरिका की लूटमार में सबसे आगे जा सकता था। ब्रिटिश सरकार मुजरिमों और अपराधियों को अमरीका में काले पानी की सज़ा देती थी ताकि वे वहाँ खदानों और खेतों में काम करें। साफ था कि वे इन लोगों को पढ़ाई करने और कारखाने लगाने की अनुमति नहीं देते थे ताकि वे आत्मनिर्भर ना बन सकें। वहाँ बसाए गए लोग अपने उत्पादों को सिर्फ ब्रिटेन को ही बेच सकते थे, वो भी उस कीमत पर जो ब्रिटेन निर्धारित करता था। वहाँ बसाए गए लोगों को पूरी तरह से ब्रिटेन पर निर्भर रहना पड़ता था। वे सिर्फ ब्रिटिश उत्पाद ही खरीद सकते थे। उन्हें अपने उत्पादों के लिए भी सिर्फ ब्रिटिश कच्चा माल ही खरीदने की अनुमति थी। इस तरह की कड़ी शर्तों से आजिज आकर उन लोगों ने ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी और स्वाधीनता हासिल करने के लिए जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में उन्हें फ्रांस का खुफिया समर्थन भी हासिल था। फ्रांस ने शुरुआत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में फाइनेंशियल सपोर्ट किया, लेकिन बाद में नफरी भी भेजनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि फ्रांस ने स्पेन को भी इस जंग में घसीटने का प्रयास किया। आखिरकार अमरीकी ब्रितानी सरकार के पंजे से आज़ाद होने में कामयाब हो गए।